वाराणसी का ज्ञान वापी मस्जिद इन दिनों सुर्खियों में है। मस्जिद के भीतर मंदिर होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच के लिए वाराणसी की निचली अदालत ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। यह आदेश पहले भी दिया गया था, लेकिन मस्जिद प्रबंधन से जुड़े लोगों ने एडवोकेट कमिश्नर की तटस्थता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था। अब गुरुवार को अदालत ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर के रूप में बरकरार रखते हुए दो और लोगों को उनके साथ जोड़ दिया है। अदालत की कार्रवाई और आदेश के बारे में बताते हुए मदन मोहन यादव कहते हैं,
दो और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। 17 तारीख तक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष सबमिट की जाएगी। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कराते एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये तीन दो और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष।
ज्ञान वापी मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति अब अदालत के निर्णय को जल्द ही चुनौती देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य इस बारे में कहते हैं,
इसमें बाधा किसी को डालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इस देश में कुछ अपनी वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं जो उसमें बयानबाजी करने लगते हैं, ऐसी चीजों का विरोध करने लगते हैं। ये माननीय न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के माध्यम से कमिश्नर कोई भी मुकदमे होते हैं उसमें नियुक्त किया जाता है और कमिश्नर अपना स्थलीय निरीक्षण करके कोर्ट को रिपोर्ट देता है, तो उसमें कोई बयानबाजी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस देश में जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं वो इस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं। सच लोग जानना चाहते हैं, सच न्यायालय के माध्यम से जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त कमिश्नर है उनके माध्यम से लोगों के सामने आए। हम तो ऐसे फैसले का स्वागत करते हैं।
शिवसेना ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि भाजपा अपने फायदे के लिए इन मुद्दों को हवा देती है।
राम मंदिर का आंदोलन के बाद इस देश को एक स्थिरता चाहिए। मंदिर बन गया है, अयोध्या में लोग जाने जाते आते रहते, आजकल हम भी जा रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन अब ये जो बात चल रही है ये सब राजनीतिक फायदे के लिए बातें चल रही है। मंदिर की बात है तो मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहा, तो अखंड हिंदुस्तान की बात आप करने वाले लोग हैं तो पहले वहां से शुरुआत करें। वहां भी बहुत मंदिर है जो संकट में है, बांग्लादेश में हमारी मंदिर है संकट में है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ भी हिंदू हमारा समाज संकट में है, तो जरा उनके तरफ भी ध्यान दीजिए। नेपाल में हमारा हिंदू समाज संकट में है, हिंदू अखंड हिंदू राष्ट्र की बात आप लोग कर रहे हो तो आप वहाँ से शुरुआत कर लीजिए।
मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे की अनुमति देने वाले जज को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है। फैसला देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में इस बात का उल्लेख भी किया है। जज के अनुसार एक साधारण सिविल मामले को असाधारण मुद्दे के रूप में बदल दिया गया है, इसके चलते उनके परिवार को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। ज्ञान वापी मस्जिद की तरह ताजमहल का मुद्दा भी अदालत में था। ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह जनहित याचिका प्रणाली का मजाक न बनाए। यह याचिका भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने दायर की थी, जिसमें ताजमहल को तेजो महालय बताते हुए दावा किया गया था कि ताजमहल के बंद दरवाजों के भीतर भगवान शिव का मंदिर है। याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने अपनी याचिका के बारे में बात करते हुए कहा,
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हमने प्रेयर की थी, दूसरा जो रूम्स ओपन करने की बात करी थी हमने, तीसरा जो ये एक्ट होता है जो ASI जिस पे काम करती है उस एक्ट को हमने रीवेरीफाई और रीकंडक्ट करने की बात कही थी, और चौथा जो जो अंदर बेसमेंट में जो वॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जो यमुना नदी की तरफ एक गेट था वो बंद कर दिया गया है, उन गेट्स को स्टडी करने का।
ताजमहल विवाद में जयपुर राजघराने की दिया कुमारी भी कूद पड़ी है। भाजपा सांसद दिया कुमारी का दावा है कि ताजमहल का निर्माण उनके राजघराने के जमीन पर कराया गया था। इसका हर्जाना मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं दिया था।
ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है।
और अब बात देश में बढ़ती महंगाई की। महंगाई की मार से पूरा देश परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमत से लेकर खाने पीने की वस्तुएं तक महंगी हो चुकी हैं। महंगाई के मामले में अप्रैल का महीना रिकॉर्ड तोड़ रहा। इस दौरान रिटेल महंगाई दर अपने 8 साल के उच्चतम यानी 7.79% पर जा पहुंची। मार्च के महीने में यही दर 6.95% पर थी। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को भोपाल में ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर हल्ला बोला। विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की गई। कांग्रेस के युवा विधायक कुणाल चौधरी भाजपा सरकार को घेरते हुए कहते हैं,
प्रदेश के अंदर युवाओं के बेरोजगार को रोजगार को बेचने वाले, व्यापम करने वाले, आदिवासियों पे अत्याचार, किसान के खेतों के दाम नहीं देने वाले, जो किसान विरोधी नौजवान विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ संकनात किया है, पूरा स्पष्ट है। या तो इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दो, किसान को फसलों के दाम दो, नहीं तो कि ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार के गद्दी छोड़ो।
और चलते चलते चर्चा गुरुवार को हुए दूसरे ग्लोबल कोविड समिट की। समिट में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से निपटने के लिए जन केंद्रित रणनीति बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि भारत इसमें अहम योगदान दे सकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में पारंपरिक दवाओं के इस्तेमाल पर भी अपनी बात रखी। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।